अभय के शरीर ने अचानक हर हरकत छोड़ दी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। सांसें चल रही थीं, पर चेतना कहीं बहुत दूर जा चुकी थी। ये दृश्य देखते ही महारानी का दिल जैसे थम गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने उनका बेटा नहीं बल्कि उसका निर्जीव शरीर पड़ा हो। उनके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब नहीं, अब मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। उनके हाथ कांपने लगे, पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया, दुनिया उनके सामने घूमने लगी। अभय, ये शब्द उनके होठों से निकला पर आवाज जमीन तक पहुंचने से पहले ही टूट गई। महारानी लड़खड़ाई, उनका शरीर आगे की ओर झुक गया जैसे वे अभी जमीन पर गिर जाएंगी। उसी पल महाराज ने उन्हें थाम लिया, मजबूत भुजाओं ने उन्हें सहारा दिया, नहीं तो वह पल उन्हें भी तोड़ देता। संभालिए खुद को महारानी। महाराज की आवाज भारी थी पर उसमें कठोरता नहीं थी। महारानी की आंखों से आंसू बहते रहे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है, उनकी आवाज टूट गई, जैसे मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ। महाराज ने उन्हें अपने पास खींच लिया। नहीं, उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ऐसा मत कहिए। उन्होंने महारानी की आंखों में देखा, अगर आप ही टूट जाएंगी, महाराज बोले, तो हमारे पुत्र को कौन संभालेगा। ये शब्द किसी आदेश की तरह नहीं थे, ये एक पति की गुहार थी, एक पिता का डर था। महारानी की सिसकियां थोड़ी धीमी हुई। महाराज ने गहरी सांस ली, मुझे भी उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने स्वीकार किया, वह सिर्फ युवराज नहीं है, वह मेरा बेटा है। उनकी आवाज एक पल के लिए कांप गई, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर राजा बन गए। नियति को यही मंजूर है, उन्होंने कहा, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। उन्होंने वैद्य की ओर देखा, फिर महारानी की ओर। आप चिंता मत करिए, महाराज बोले, हम इस दुनिया के हर वैद्य को बुलाएंगे। उनकी आंखों में अब आग थी। हर एक को, उन्होंने दोहराया, जो इस जहर को जानता हो, जो इसके तोड़ के बारे में सुन चुका हो। महारानी ने उनकी ओर देखा, आंखों में अब भी डर था पर उसके पीछे एक हल्की सी उम्मीद भी थी। मुझे विश्वास है, महाराज ने कहा, कि हर जहर का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। उन्होंने अभय की ओर देखा, वह वहीं पड़ा था, निशब्द, अचेत। वह हमारा पुत्र है, महाराज ने कहा, और हम उसे यूं नहीं खो सकते। महारानी ने कांपते हाथों से एफ अभय का माथा सहलाया। तुम्हें कुछ नहीं होगा अभय, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, माँ यही है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। इस बार यह हार का नहीं बल्कि आने वाले संघर्ष का संकेत था, क्योंकि इस महल में अब एक माँ का डर और एक पिता का संकल्प दोनों जाग चुके थे, और नियति अब उन्हें रोक नहीं सकती थी। वैद्य ने अभय की नाड़ी एक आखिरी बार देखी और धीरे से खड़ा हो गया। महाराज, उसने शांत स्वर में कहा, अभी युवराज को अकेला छोड़ देना ही उचित होगा, उनके शरीर और मन दोनों को विश्राम की सख्त आवश्यकता है। महाराज ने सिर हिलाया, वैद्य ने हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही कक्ष में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब वहां कोई वैद्य नहीं था, कोई औषधि नहीं थी, सिर्फ एक माँ, एक पिता और उनका अचेत पुत्र। महाराज ने द्वार की ओर देखा और सैनिक को संकेत किया, भोजन लाया जाए, उन्होंने आदेश दिया। कुछ ही समय में सादा किंतु पौष्टिक भोजन आ गया। महारानी अब भी थकी हुई थी, आंखें सूजी हुई, शरीर शिथिल। महाराज ने स्वयं थाली उठाई, उन्होंने धीरे धीरे महारानी को भोजन कराया। एक राजा नहीं, एक पति की तरह महारानी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाती रही, मानो बोलने की शक्ति ही शेष ना हो। भोजन के बाद महाराज ने उन्हें अभय के बिस्तर के पास बैठा दिया। यहीं रहिए, उन्होंने नर्म स्वर में कहा। उसके पास महारानी ने अभय का हाथ थाम लिया, उसकी उंगलियां ठंडी थीं पर सांसें चल रही थीं। महाराज ने एक आखिरी बार अपने पुत्र की ओर देखा, फिर वह कमरे से बाहर निकल आए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनका चेहरा बदल गया, जो कोमलता कुछ क्षण पहले तक वहां थी, वह क्रोध में बदल चुकी थी। उनकी आंखें लाल हो गईं, जबड़ा कस गया। हमें लगता था, उन्होंने धीमे लेकिन जहर भरे स्वर में कहा, कि तुम नियमों के पक्के हो। उनके कदम तेज हो गए, हमें लगता था कि तुम ऐसी घृणित चालें नहीं चलोगे। उनकी मुठियां भींच गईं, पर यहां हमारी ही भूल थी। गलियारा शांत था, पर महाराज के भीतर तूफान उठ चुका था। ये सिर्फ उनके पुत्र पर हमला नहीं था, यह एक पिता की सीमा तोड़ने का प्रयास था और एक राजा के धैर्य की परीक्षा। और जब कोई पिता टूटता है तो एक राजा जन्म लेता है। अब इस दुनिया में इस जहर का उत्तर मिलेगा और उसकी कीमत बहुत भारी होगी। अंडस्को, अगर हमारा वंशज साधना नहीं कर सकता। महाराज की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें ऐसा भार था जो हवा को भी थर्रा दे, तो हम ये तय जरूर करेंगे कि तुम्हारे वंश में भी कोई साधना न कर सके। ये शब्द किसी क्रोध का विस्फोट नहीं थे, यह एक निर्णय था, ऐसा निर्णय जो पीढ़ियों तक असर डालता है। ये कहकर महाराज महल की सीमा से बाहर निकल आए। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर बादल छाए थे और चांद की रोशनी भी मानो रास्ता दिखाने से इनकार कर रही थी। महाराज अकेले थे, उनके कदम महल की रोशनी से दूर उस अंधेरे जंगल की ओर बढ़ते चले गए, जहां कोई साधारण मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, धरती ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। उनके पैरों के नीचे हल्की सी ऊर्जा घूमने लगी। धीरे धीरे वह ऊर्जा स्पष्ट होने लगी और एक नीले कमल का आकार लेने लगी। नीला कमल शांत, गंभीर और अत्यंत शक्तिशाली। कमल पूर्ण होते ही महाराज का शरीर धरती से ऊपर उठ गया। वे उड़ नहीं रहे थे, बल्कि मानो हवा उन्हें अपने ऊपर धो रही हो। जंगल के भीतर वे किसी परछाई की तरह आगे बढ़ते चले गए। पेड़, लताएं, चट्टानें सब उनके रास्ते से स्वयं हटती चली गईं। कुछ ही समय में वे एक विशाल पत्थर के सामने रुके। बाहर से वह साधारण पहाड़ जैसा दिखता था, पुराना, खुरदरा, समय से घिसा हुआ, पर महाराज जानते थे ये साधारण नहीं है। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उस पत्थर पर रखा और अपने मंत्र को से और प्रवाहित कर दी। नीली ऊर्जा पत्थर में समाने लगी, पहले धीरे फिर तेजी से। पत्थर के भीतर से दरारों की आवाज आने लगी, एक गहरी भारी गूंज, और फिर वह विशाल पत्थर कई टुकड़ों में बंट गया। लेकिन वे टुकड़े जमीन पर नहीं गिरे, वे हवा में स्थिर हो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। पत्थर के हटते ही उसके पीछे छुपा हुआ सत्य सामने आ गया, एक विशाल प्राचीन द्वार। द्वार काले और भूरे पत्थर से बना था, जिस पर समय की मार साफ दिखती थी। उस पर उकेरे गए चित्र जीवंत प्रतीत हो रहे थे, सर्प, कुंडलियां मारे, आंखें बंद किए हुए, कमल पूरी तरह खिला हुआ, केंद्र में एक बिंदु के साथ, सिंह गर्जना की मुद्रा में, हाथी स्थिर विशाल स्मृति का प्रतीक, गरुड़ पंख फैलाए आकाश को चीरता हुआ, मोर पूंछ फैलाए रहस्य और चेतना का संकेत। ये केवल चित्र नहीं थे, ये प्रतीक थे, देवों और प्राचीन शक्तियों के साक्ष्य। महाराज ने द्वार की ओर देखा, उनकी आंखों में न डर था न हिचक, सिर्फ एक अडिग निश्चय, मेरे पुत्र के भविष्य को तबाह करके तुम चैन से नहीं जी पाओगे। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं किसी शत्रु पर दया नहीं करूंगा। हवा भारी हो गई, जंगल पूरी तरह शांत हो गया, मानो पूरी दुनिया इस द्वार के खुलने की प्रतीक्षा कर रही हो, और ये द्वार अब फिर से किसी के लिए खुलने वाला था। अंडस्को जैसे जैसे महाराज अपनी ऊर्जा उस प्राचीन द्वार में प्रवाहित करते गए, वैसे वैसे द्वार पर उकेरे गए चित्रों में हलचल होने लगी। सबसे पहले सर्प की आंखें खुली, पत्थर की पुतली में नीली चमक दौड़ गई, फिर कमल की पंखुड़ियां हल्के से हिली, मानो शताब्दियों की निद्रा से जाग रही हों। एक एक करके सिंह ने अपनी गर्दन उठाई, हाथी की आंखों में चेतना लौटी, गरुड़ के पंखों में कंपन हुआ और मोर की जमी हुई पूंछ धीरे से फैल गई। वे चित्र नहीं रहे, वे जीवित हो चुके थे। महाराज की ऊर्जा उन्हें छूते ही वे सभी द्वार से अलग हो गए और उनके सामने मार्ग बना दिया। फिर एक साथ सभी देवीय जानवरों ने महाराज की ओर सिर झुका दिया। ये सम्मान किसी राजा को नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उस वंश को, उस रक्त को जिसे वे पहचानते थे। जानवर हटे और द्वार अपने आप खुल गया। बिना किसी शब्द के, बिना किसी मंत्र के, द्वार के भीतर घोर अंधकार था, इतना गहरा कि जैसे प्रकाश ने वहां जाना ही छोड़ दिया हो। पर महाराज नहीं रुके, उनकी आंखें नीली चमकने लगीं, ऐसी चमक जो अंधेरे को चीरती चली जाती है, मानो वह अंधेरे में नहीं देख रहे थे, बल्कि अंधेरा स्वयं उनके सामने प्रकट हो रहा था। महाराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस अज्ञात कक्ष के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही उनका शरीर अंदर समाया, द्वार अपने आप बंद हो गया, एक भारी अंतिम गूंज के साथ। बाहर देवीय जानवर वापस अपनी जगह लौट आए, उनकी देह फिर से पत्थर बन गई, उनकी आंखें फिर से निर्जीव हो गईं। हवा में तैर रहे पत्थर के टुकड़े धीरे धीरे नीचे आए और फिर से एक विशाल शिला का रूप ले लिया। कुछ ही पलों में वह स्थान वैसा ही हो गया जैसा पहले था, एक साधारण जंगल, एक साधारण पहाड़। किसी को देखकर यह विश्वास करना असंभव था कि यहां अभी अभी देवों से जुड़ा द्वार खुला था। अगर कुछ बचा था तो बस धरती पर बने महाराज के पैरों के निशान। वे निशान ही गवाही दे रहे थे कि यह कोई भ्रम नहीं था, और द्वार के भीतर महाराज एक ऐसे स्थान में खड़े थे जहां समय स्थिर था, जहां हवा नहीं थी पर ऊर्जा हर ओर थी, जहां अंधेरा था पर भय नहीं। महाराज ने आगे देखा, मैं वापस आ गया हूं, उन्होंने शांत स्वर में कहा, और अंधेरे ने जवाब देना शुरू किया, महाराज रुद्रसेन का स्वागत है।